હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ આઠમો અધ્યાય શ્લોક સંખ્યા 48. ઇસ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેં પ્રવેશ કરને સે પહેલે ગુરુ ઓર ગૌરંગ સે કૃપા કી યાચના કરતે હુએ મંગલાચરણ કરેંગે તાકી હમ જો અધ્યયન કર રહે હૈ ઉસકા પૂરા પૂરા લાભ પ્રાપ્ત હો સકે જો કી હૈ કૃષ્ણ પ્રેમ કી પ્રાપ્તિ. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं दराति स्वपरान्तिकम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो. प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 48. अत्यंत ही सुंदर युधिष्ठिर महाराज वे लाभ कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर विलाप करते हुए कह रहे हैं. अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदि मे हृदि रूढ़म दुरात्मनः प्राकस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षोहिणी हताः. अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः प्राकस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षोहिणी हताः. अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः प्राकस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षोहिणी हताः. अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः प्राकस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षोहिणी हताः. शब्दार्थ: अहो हाय मे मेरा पश्यत चर देखो तो सही अज्ञानम अज्ञान हृदि हृदय में रूढ़म स्थित दुरात्मन पापी प्राकस्य अन्यों के लिए एव निश्चय ही देहस्य शरीर का बहव्य अनेका अनेक में मेरे द्वारा अक्षोहिणी सेना या व्यूह हता मारी गई। अनुवाद राजा युधिष्ठिर ने कहा हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ जरा मेरे हृदय को तो देखो यह अज्ञान से परिपूर्ण है इस शरीर ने जो अंततः पर उपकार के लिए होता है अनेकानेक अक्षोहिणी सेना का वध करा दिया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं 21,870 रथों 21,870 हाथियों 1,09,650 पैदल और 65,600 घुड़सवार का व्यूह अक्षोहिणी कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षोहिणी सेना मारी गई। महाराज युधिष्ठिर संसार के अत्यंत धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी बड़ी संख्या में प्राणियों का वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं क्योंकि ये युद्ध उन्हीं के उन्हें ही सिंहासन आरूढ़ कराने के लिए लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है और मरने के बाद यही कुत्तों तथा श्रृगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। इन्हें विषाद है कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। जैसा कि हम अब उस जगह पर पहुंचे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जाना चाहते थे परंतु युधिष्ठिर महाराज ने अपने प्रेम के प्रस्ताव से उन्हें रोक दिया और वो जो जा नहीं पाए। अब वो हस्तिनापुर में है परंतु युधिष्ठिर महाराज भगवान के सानिध्य से भी अभी संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे ऋषि मुनि बहुत सारे ब्राह्मण उन्हें समझा रहे हैं परंतु उनके हृदय का दुख दूर नहीं हो रहा है। समस्त राजागण और भगवान जो जो उनको समझा रहे हैं उनका दुख और भी बढ़ रहा है। जैसे उनको ज्ञान दिया जा रहा है वैसे ही वो और भी अधिक दुखी होकर कहते हैं कि अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः। हाय हाय चरत आप मेरे दुरात्मन यानी अपराध को तो देखो मेरे इतने भरे अज्ञान को तो देखो। मेरा हृदय उसके अंदर अज्ञान इतना जड़ पकड़ गया है कि आप मुझे उपदेश दे रहे हो परंतु मुझे आपका उपदेश कोई असर ही नहीं कर रहा है। मैं इतना पापी हूँ इतना दुरात्मा हूँ मेरे मन में इतना अपराध भरा हुआ है इतने अपराधों का बोझ है मेरे ऊपर कि मेरे हृदय में इतना अहो में पश्यता ज्ञानम आप देखो तो सही मेरे अज्ञान को जरा जो मेरे हृदय के अंदर इतना अज्ञान है और मैं कितना दुरात्मा हूँ। यहाँ पर आत्मा का मतलब मन लिया जाएगा और वो सोच रहे हैं कि मेरा मन कितना मलिन है कितना बड़ा अज्ञानी हूँ और अज्ञान का कारण बता रहे हैं प्राकस्यैव देहस्य कि इस देह के लिए इतना वध कराया और देह के लिए शब्द का उपयोग किया है प्राकस्य पारक्य का क्या मतलब होता है तारक्य का मतलब होता है जो कभी मेरा नहीं हो सकता, वो दूसरे का धन है, यानी दूसरे के काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भले ही स्वयं को अज्ञानी कह रहे हैं, पश्यता ज्ञानम हृदि, कि मेरा हृदय में बहुत बड़ा अज्ञान है, लेकिन सबसे बड़ी जो वास्तविक जो ज्ञान की बात है वो बता रहे हैं। वे कहते हैं तारक्य जो बिल्कुल दूसरों के काम आता है, मैं तो आत्मा हूँ, ये देह आत्मा के काम कभी नहीं आ सकता। देह में आत्मा रहती तो है, तो सब कहेंगे ना कि देह आत्मा के काम आ रही है, क्योंकि आत्मा को अंदर संभाल के रखा है। परंतु वास्तव में आत्मा भले ही देह के अंदर रहती है, परंतु सदैव उस देह की सेवा करती है। परंतु उसी देह के कारण आत्मा को बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है, कभी नरक में जाना पड़ता है और भी अधम योनियों में जाना पड़ता है। आत्मा को अलग अलग जगहों पे, कभी नरक में, कभी कहाँ पर, कभी कहाँ पर, कभी भौतिक जगत में जो भी दुख हो रहा है, वास्तव में उसका मूल कारण ये देह है। तो देह कभी भी आत्मा का साथ नहीं देता, बल्कि देह इसको अधम योनि में भेजने का कारण बनता है। देह के कारण आत्मा को बहुत बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। फिर भी आत्मा जब तक शरीर में होती है, देह को खिला रही है, पिला रही है, जिला रही है, जब तक आत्मा शरीर के अंदर होगी वो इस देह की सेवा करती, और क्यों कर रही है? व्यर्थ, कोई लाभ नहीं है इस देह को पालने पोसने का। आत्मा को देह से कभी कोई लाभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो चिन्मयी है, आत्मा को उससे कोई लाभ नहीं। लाभ किसको होगा? यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बता रहे तारक यस्य एव देहस्य। ये तो दूसरों को लाभ देने के लिए है। तो यहाँ समझना चाहिए कि वो किन की बात कर रहे हैं, जिनके लिए इस देह को जिनसे लाभ होता है, किसके लिए है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया, वे बता रहे हैं कि जब तक शरीर में प्राण होता है ये परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों तथा श्रृंगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। तो यहाँ पर वास्तविकता बताते हैं कि ये देह क्यों है, क्योंकि अब जो भी वस्तु है उसका वास्तविक कंज्यूमर कौन होता है? कोई भी वस्तु अंत में जिसके काम आती है ये उसी की कहलाती है। तो देह को भले हम कितना ही सवारें, कितना ही सजाएं, कितना ही खिलाएं, आखिर में तो सयार को, कुत्तों को, कीड़ों को लाभ होता है इस देह से। तो यही बात यहाँ युधिष्ठिर महाराज समझा रहे हैं, पारक यानी कि दूसरों को कार्य, दूसरों के काम आने वाली, पारक यस्य एव देहस्य, अर्थात वही कुत्ते, गिद्ध, कीड़े इस देह को कंज्यूम करेंगे ना अंत में। हम भले कितना ही बोलते रहें ये देह मेरा है, ये देह मेरा है, ये देह मेरा, परंतु आत्मा तो चिन्मय है, इसका तो देह के साथ कोई संबंध ही नहीं है। भगवान ऋषभदेव अपने ज्ञान में बताते हैं कि ये देह आत्मा को दुख देने के लिए दिया गया है। वास्तव में इस संसार में इस आत्मा को जितने भी दुख मिलते हैं, जितने भी कष्ट मिलते हैं, वो इस देह के संबंध के कारण मिलते हैं। इस देह से क्योंकि किसी का संबंध होता है इस भौतिक जगत में आकर, फिर जितना भी आत्मा को कष्ट मिलता है, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, जो कुछ भी होता है देह से रिलेशन के कारण होता है, वरना आत्मा को कभी कोई दुख होता ही नहीं है। वो देह को अपना मान बैठा है, इसी के कारण उसे दुख होता है। इसलिए यहाँ युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं पारक यस्य एव देहस्य। ये पारक यस्य एव शब्द को हमें समझना चाहिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, जो दूसरे की प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करने के लिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैंने कितनी जानों की हत्याएं करवाई, कितना भारी अज्ञान है। पारक ये शब्द जो है वो श्रीमद् भागवतम में बहुत बार आया, 3 बार कम से कम इस तरह के श्लोक आए हैं जिसमें ये क्वेश्चन किया गया है श्रीमद् भागवतम में कि ये देह आखिर है किसका। पहला आंसर, ये आत्मा का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का यदि होता तो उसका साथ देता ना। आत्मा तो इसको यही राख करने के लिए, जलने के लिए, मरने के लिए, कीड़ों और कुत्तों को खाने के लिए छोड़ के आगे निकल जाती है। आत्मा का तो साथ ये दे ही नहीं सकता, तो आखिर ये देह है किसका। अब देखो, जब तक इस देह के अंदर आत्मा होती है, यानी जब तक ये शरीर जिंदा होता है, तब तक बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वो कहें या हम कहें, परंतु कहने से कोई किसी का हो नहीं जाता। जैसे कभी छोटा बच्चा होता है हमारे परिवार में और हम उसको टॉफी देते हैं और बोलते हैं, बताओ आप किसके हो, किसका बच्चा है? वो बोलेगा आपका। वो अगर है ना, मम्मी इसको प्यार कर रही होगी, मम्मी उसको टॉयज लेकर दे रही होगी, तो क्या बोलेगा? मम्मा का। और अगर पापा उसको लेकर जा रहे होंगे घुमाने करने के लिए, और फिर पहले बताओ किसका बच्चा है, फिर बोलेगा पापा का। लेकिन वास्तविकता क्या जानी है, वो शास्त्र बताएगा कि ये देह आखिर है किसका, क्या माता का है। तो भागवत में ये वार्तालाप आता है कि वास्तव में ये देह है किसका, क्या उस अन्नदाता का है जो इस शरीर को, चाहे वो किसी का भी जीव का शरीर हो, उसको पालता है, क्या उसका है? परंतु वो परमेश्वर तो भले ही इस संसार के कण कण में रहकर इस शरीर को पालने के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करता है, लेकिन जब बुलाता है तो इस शरीर को अपने पास नहीं बुलाता, शरीर तो यहीं रह जाता है। इसका मतलब है ये उसका नहीं हो सकता। फिर कोई ये कह सकता है, क्या ये पिता का है? क्योंकि पिता का एक अंश होता है जो वीर्य बनकर माता के गर्भ में पलता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। परंतु वो पिता का कैसे हो सकता है, क्योंकि पालती तो उसको माता है। माँ के पेट में वो 9 महीने तक रहता है, माँ उसे सींचती है, बड़ा करती है, पैदा करती है, और फिर वहां पर माता ही उसको सब चीजें, मतलब माता के शरीर से ही वो प्राप्त करता है। तो क्या माता का है? तो कोई बोलेगा कि नहीं, माता का भी नहीं है, ये तो नाना का है या फिर दादा का है। मतलब ऐसे पूछ रहे थे बहुत सारे, आगे हम पढ़ेंगे भागवतम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि वास्तव में ये देह है किसका, क्या उस स्वामी का है जो कुछ दाम देकर इस शरीर को खरीदते हैं और उससे कार्य कराते हैं। जैसे हम, जैसे बोलते ना, ये हम इसके नौकर हैं और सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, उसके उसके घर का काम करते हैं, उसके मार्केट का काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, क्या ये उसका है? तो भागवतम में बहुत बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि ये देह आखिर है किसका, परंतु उत्तर कभी नहीं आया। उत्तर एक ही आया है, पारक्यस्यैव देहस्य, कि युधिष्ठिर महाराज जो दे रहे हैं वही उत्तर है कि ये चाहे किसी का भी हो, मेरा नहीं हो सकता, हमारा नहीं हो सकता। या तो ये अग्नि का इसका दाह संस्कार हो जाएगा, जब तक आत्मा इसके अंदर है तब तक इसको रखेंगे, या तो इसका दाह संस्कार करेंगे, या कुत्ते खा लेंगे, या फिर गिद्ध खा लेंगे, या कीड़े मकोड़े। जब जैसे कुछ, जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में क्या होता है, देह का अग्नि संस्कार कर दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो देह को चील कुत्तों के चील कबों के हवाले कर देते हैं कि उनका भोजन बने कम से कम, क्योंकि अगर उसको मुस्लिम लोग जैसे दफना लेते हैं, तो अगर दफना भी लेते हैं तो भी शरीर को तो कीड़े वगैरह काट ही लेते हैं। मतलब किसी का भी है, चाहे कुत्तों का है, चाहे सियारों का है, चाहे जैकल्स का है, चाहे किसी का भी है, पशु का है, परंतु ये आत्मा का नहीं है। आत्मा तो इस देह का खाली सप्लायर है, वो भी कैसा? ड्यूटी फ्री। जैसे दुकानदार कोई वस्तु संभाल के रखता है बहुत टाइम तक, उसको सजा के रखता है, और फिर एक दिन आता है वो कंज्यूमर उसको आके ले जाता है और वो उसका उपभोग करता है, वो उसको भोगता है। उसी तरह से आत्मा इस शरीर को संभालती है जब तक इसके अंदर रहती है, तो उसको संभालती है, उसको खिलाती है, पिलाती है। हम देह को कितना सजाते हैं, है ना, हम तो इस देह की पैकिंग कर रहे हैं, समझो कपड़ा लगा लगा कर। इस देह का श्रृंगार जो पैकिंग 1000 रुपए में हो सकती है, तो कोई कोई लोग 10,000-20,000 की ड्रेसेस पहनाते हैं, इतने बड़े बड़े गहने, इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे परफ्यूम लगाकर इस देह को सजा रहे हैं। तो चाहे कितने ही बड़े बड़े इसको खूबसूरत कपड़ों में सजाओ, या कितने ही बहुत ही महंगे महंगे गहने पहनाए, या कितने ही बड़े बड़े वाहनों में, एरोप्लेन्स में इसको घुमाओ, कुछ भी करो, खूब सजा दजा के इसको रखो, परंतु अंत में तो ये कुत्तों का भोजन ही बनेगा, या तो राख बन जाएगा। बीच में चाहे नाम कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में क्या है, फूड फॉर डॉग या जैकल्स, नहीं तो राख बनेगा या कीड़े खाएंगे। तो यही ये सोच रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि पारक्यस्यैव देहस्य, कि देह जो मेरे किसी काम आने वाला नहीं है, इसके लिए मैंने क्या करवाया, बहव्यो में क्षोहिणी हतः, बहुत सारी अक्षवणी सेनाओं की हत्या कराई इस देह को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बैठना था, इसीलिए तो ये युद्ध हुआ था। और युधिष्ठिर महाराज आज बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं, और हम वास्तव में हम सबको ये बात समझना है कि हम सबके शरीर के साथ यही सत्य घटना घटने वाली है। ये शरीर जिसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स चाहिए, अच्छे शरीर, अच्छा आप लग कैसे रहे हो, वाव सुपर, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ये देह वो हम है नहीं, ये वास्तविकता है। और ये देह हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए नहीं है, वो इसे दुख देने के लिए, हम सबके शरीर के साथ यह सत्य घटना घटने वाली। इसलिए कम से कम हम अपना अध्ययन करें कि हम इस नाशवान शरीर के लिए कोई भी गलत काम ना करें। देह आत्मा का साथ कब तक दे सकता है, 50 साल 60 साल 70 साल, उसके बाद देह छूटा तो परिवार छूटा, परिवार भी छूट जाएगा। अब देह ही हमारा नहीं रहा, हम तो आत्मा है, तो परिवार देह का, परिवार का संबंध देह से होता है, आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। परंतु उन परिवार वालों के लिए इस देह के द्वारा हमने जो अपराध किए, और उन अपराध के फलों का भोग तो हमें ही भोगना पड़ेगा। हमारी आत्मा जो कि अपने भगवान से करोड़ करोड़ सालों से, करोड़ करोड़ जन्मों से बिछड़ी हुई है, उसको और भी दूर कर दिया जाता है इस देह के परिवार, इस देह के संबंधों के द्वारा। इस देह में जब आत्मबुद्धि हो जाती है और इससे मोह हो जाता है, तो जीव इतने अपराध करता है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि देह दुख देने के लिए मिला है, और इसको और क्या कर रहा है, इसको संवार रहा है, कौन, वही आत्मा, यानी वो आत्मा जिसका देह सबसे बड़ा शत्रु है, जिसमें ये देह रहता है, वही आत्मा उसका पूरा जितने टाइम तक उस देह के अंदर होती है, बस उसी देह का विचार, उस देह को ही अपना आप समझने लगती है, कितना बड़ा अज्ञान है। देह इस आत्मा का कोई हित नहीं कर सकता। यदि कोई वास्तव में ज्ञानी है तो ये सोचना शुरू करे कि यदि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये देह मुझे यूटिलाइज करने के लिए मिला है, मैं किस प्रकार से इस देह को यूज करूँ कि मैं अपना कल्याण करूँ, ये है वास्तविक ज्ञान। और वास्तव में देह आत्मा का हित कर सकता है, वो सिर्फ एक ही क्षेत्र है और कोई क्षेत्र नहीं, और वो है भगवान की भक्ति। यदि आत्मा इस देह में रहकर भगवान की भक्ति करती है, तो क्या होगा, उसे पुनर पुनर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस फंसना नहीं पड़ेगा। बारंबार नरक में और कभी जानवर, कभी पक्षी, कभी कीड़े का जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कभी किसी बहुत ही दुखदायी अवस्था में नहीं जाना पड़ेगा यदि आत्मा इस देह को अपने कल्याण के लिए यूज करना सीख जाए तो। वास्तव में सारे शास्त्र, सारे ज्ञान का सार यही है कि हम इस देह को, जो कि हमें हमारे कल्याण के लिए मिला है, हमें इसलिए मिला है कि हम इसके द्वारा भगवत प्राप्ति करें, उसको यदि हम भगवत प्राप्ति करने में लगाते हैं तो ही हमारा कल्याण होगा, नहीं तो केवल नुकसान करता है ये देह। इसको हमारा समय, जो कि बहुत सीमित है, और इस सीमित समय में ही हमारे पास ये चांस है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस देह से मोह है और देह के संबंधियों से मोह है, तो हम अपने इस समय का व्यर्थ दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन यदि इस देह और देह के संबंधियों से ही आसक्ति समाप्त हो जाए और हम अपने आप की वास्तविकता को जानना शुरू कर दें कि हम ये देह नहीं है, हम तो आत्मा है, तो हमें अपना कल्याण करना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने कृष्ण नाम, कृष्ण की भक्ति के लिए निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का पवित्र नाम जप करेंगे, भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करेंगे, ताकि भौतिक आसक्ति से हटकर हम भगवान के प्रति अपने प्रेम का पुनः निर्माण कर सकें। तो आज हमें युधिष्ठिर महाराज ये सिखा रहे हैं कि ये देह आपके सदैव दुख का कारण बनेगा, इसलिए जब तक पॉसिबल है, जब तक आपके शरीर में ये देह है, तो इस देह के द्वारा अपना कल्याण करना सीखो, ना कि अपने आप को नीचे गिराओ। और कल्याण कैसे होगा? जब हम अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, भगवान के प्रति अपने प्रेम को पुनः निर्माण करेंगे और भौतिक आसक्ति, भौतिक देह के संबंधियों से आसक्ति को समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।